मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 26 फरवरी 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और साथ ही हार्दिक रूप से स्वागत भी करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं दिनेश कुमार, आप गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। गोवर्धन बहादुर सिंह, आप रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं। वर्षा, आप पटना बिहार से हैं। राहुल शर्मा लुधियाना पंजाब से हैं और राम सखी साहू, आप पन्ना मध्य प्रदेश से हैं। तो दिनेश, गोवर्धन, वर्षा, राहुल और राम सखी, आप 5 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब क्लास के दिन बहुत नजदीक आ गए हैं और अच्छी बात है कि मौसम में भी थोड़ी सी गर्मजोशी दिखाई दे रही है और मुझे पूरा यकीन है कि जिन विद्यार्थियों ने भी आने के लिए दाखिला लिया है उनके अंदर भी एक गर्मजोशी आनी शुरू हो गई होगी। दोस्तों, आप अपनी इस गर्मजोशी को बनाए रखें बल्कि लगातार बढ़ाते चले जाएं और मान करके चलें कि जो आपने यह निर्णय लिया है वो आने के बाद आपको अनुभव होगा आपके जीवन का कितना महत्वपूर्ण निर्णय था। दोस्तों, यहां एक मुझे महत्वपूर्ण सूचना देनी है अपने सभी उन प्रिय श्रोताओं को जो क्लासेस में आने के बारे में विचार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं या द्वंद में फंसे हुए हैं, उनके लिए सूचना यह है कि दिन बहुत कम रह गए हैं, देखिए, और अच्छी बात यह है कि सीट भी बहुत कम रह गई है, बहुत सीमित सीट है और सीमित दिन रह गए हैं। तो दोस्तों, आप सब में से जो भी अभी आने के बारे में विचार कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि अब वे जल्दी से जल्दी निर्णय लें और निर्णय लेने के बाद वे अपने निर्णय को अंजाम देना शुरू कर दें। मित्रों, मैं रिपीट करूंगा कि दिन बहुत सीमित हैं और ठीक इसी तरह से सीट्स भी बहुत सीमित बची हुई। तो फ्रेंड्स, इस सूचना के बाद अब आइए मैं आज मुख्य विषय के बारे में आपको बताना चाहूंगा। हम लोग थोड़ा संप्रदायवाद पर आज बात करेंगे, ठीक है, इसकी बात बाद में। पहले मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों न्यूज के बारे में। कल की न्यूज आपने सुनी होगी, आपने महसूस किया होगा कि मंडे को ज्यादा कुछ न्यूज होती नहीं है और उसका कारण आपको मालूम है कि सैटरडे और संडे चूंकि छुट्टी के दिन होते हैं तो स्वाभाविक रूप से न्यूज की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। लेकिन फिर भी न्यूज में कुछ बातें हैं, कुछ बातें थी जिनके प्रति हमें सतर्क रहना चाहिए। रेडियो न्यूज में आपने शुरू में हमारे प्रधानमंत्री जी के कुछ वक्तव्य देखे, है ना, मैराथन के उद्घाटन के समय में बोल रहे थे। देखिए, जो टॉपिक है हमको वहीं से मिलते हैं, भले ही वो किसी भी फोरम से क्यों न कहे गए हो या कह लीजिए कि वो बहुत ही कैजुअली क्यों न बात कही गई हो, लेकिन अगर वह आपके सिलेबस से मैच कर रहा है या यूं कह लीजिए कि अनसॉल्व्ड पेपर में उस पर यदि प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? आपने सुना मित्रों कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ शब्दों के नाम लिए, 3-4 शब्दों की उन्होंने बात की। मैं केवल वो शब्द आपके सामने रख रहा हूं और ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितना महत्व रखते हैं, इसके बारे में आप खुद विचार कीजिएगा। एक उन्होंने जातिवाद की बात की, दूसरा उन्होंने संप्रदायवाद की बात की, तीसरी बात उन्होंने भ्रष्टाचार से मुक्त भारत की बात कही, फिर उन्होंने गरीबी की बात कही, इसके साथ ही साथ उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात भी की। और उसमें न्यूज में यह याद दिलाया गया था कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है, राइट? तो आपको एक फैक्ट पता लग गया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखिए, आपको बकायदे महिला सशक्तिकरण पर हर साल कम से कम 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे। मेंस की बात मैं कह रहा हूं, मेंस का सेकेंड पेपर आप उठाइए तो आपकी मुलाकात महिला सशक्तिकरण वाले प्रश्नों से हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही, कृत्रिम बौद्धिकता की बात कही। आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से, खासकर मैं जो महसूस कर रहा हूं मित्रों, कि पिछले 6 महीने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ ज्यादा ही बातें होने लगी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉक चेन टेक्निक, इन दो के बारे में बहुत बातें होने लगी हैं। अखबारों में आर्टिकल्स आ रहे हैं, लोग जो वैज्ञानिक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, इसके प्रति अपने अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये कितना लाभ मानव जाति के लिए उपयोगी हो सकता है, किस तरीके से इसका उपयोग किया जाना चाहिए, इसकी क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या खतरनाक स्थितियां आ सकती हैं, इसके बारे में आपको ढेर सारी बातें पढ़ने को मिल रही होंगी। और हम लोग भी उस पर जब भी आर्टिकल होता है तो आपको प्रोवाइड करते हैं, करेंट कंटेंट में भी आपने महसूस किया होगा, देखा होगा, और न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स के रूप में भी। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मित्रों, इस पर प्रश्न भी पूछा गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, अभी मैंने जितने भी आपको शब्द के बारे में याद दिलाने की कोशिश की है मित्रों, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप साइंस का हिस्सा मान लीजिए, साइंस के सिलेबस का, और आप देखिए कि आपके सिलेबस में साइंस को डिफाइन नहीं किया गया है, तो साइंस को आपको पूरी तरह से करंट अफेयर्स के माध्यम से तैयार करना है कि साइंस यानी कि विज्ञान जगत की किन बातों का उल्लेख अखबारों में मिल रहा है या विज्ञान की किन बातों की चर्चा हो रही है, उसमें मुझे ये कृत्रिम बौद्धिकता और ब्लॉकचेन टेक्निक, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें लग रही हैं। और आप अगर 2013 का पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें 3D टेक्निक, प्रिंटिंग की जो टेक्निक आई थी उसकी बात भी हुई थी, अंगूठे के निशान वाली बात भी उसमें आई थी। तो इस दृष्टि से मतलब मेरा अनुमान है कि ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर मित्रों, महिला सशक्तिकरण, जातिवाद, संप्रदायवाद, गरीबी, भ्रष्टाचार, इन पर प्रश्न पूछे ही जाते हैं, और आपको सतर्क इस बात में रहना है कि देखिए, ये टॉपिक हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, 5वीं 6वीं से आप भी पढ़ रहे होंगे, अभी भी पढ़ रहे हैं आप, तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो बहुत ही चलताऊ बात होती है इनके बारे में, वो तो आपको मालूम ही है। अगर आप भी वही लिखेंगे जो दूसरे बिल्कुल चलताऊ तरीके से इसके बारे में जानते हैं और लिखते हैं, तो आप यूं कह लीजिए कि हम भी भीड़ में शामिल हो जाएंगे। तो आपको कुछ विशिष्ट लिखना होगा, जब तक आप कुछ विशिष्ट नहीं लिखेंगे तो अलग से कुछ अलग अतिरिक्त नंबर नहीं मिलेंगे, तो फिर तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है। तो बहुत जरूरी है कि ये जिनकी बातें मैं कर रहा हूं, जिन पॉइंट्स की चर्चा यहां हो रही है, इनके बारे में आपके पास अच्छी समझ हो और सैद्धांतिक जानकारियां हों। मतलब इस भ्रम में मत रहिएगा कि ये तो एक तो जनरल स्टडीज ही है और फिर ये टॉपिक्स तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, तो ठीक है, हम जानते हैं, परीक्षा में पूछा जाएगा, हम लिख देंगे। नहीं, आपको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए मित्रों, आपको दो काम जरूर करने चाहिए। पहला तो यह कि इनकी बकायदे क्या परिभाषा है और क्या इनके तत्व हैं, इनकी पहचान क्या है। इनफैक्ट जब हम शास्त्रीय दृष्टि से इनको देखते हैं या बौद्धिक एकेडमिक तरीके से जब इनके बारे में बात होती है, तो वो बात कैसे होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात कि इनसे जुड़ी हुई जो करंट अफेयर्स हैं या जो वर्तमान घटनाएं घटित हो रही हैं, वो क्या हैं, किस तरीके की हैं, ये दो बातें ही आपको दूसरों से विशिष्ट बनाएंगी। राइट फ्रेंड्स, आखिरी जो खबर है वो है दोस्तों रुस्तम 2 की। आपने देखा कि न्यूज में भी था, आज अखबारों में भी कुछ में है कि ये हमारा लड़ाकू ड्रोन विमान है, मानव रहित ड्रोन है, और इसका जो नामकरण किया गया है वो हमारे पूर्व वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस क्षेत्र में काफी काम किया है, रुस्तम दमानिया हमारे साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर रखा गया है। और यह जो ड्रोन है, एक अमरीकी ड्रोन है, उसका नाम है प्रीडेटर, लगभग उसी तरह का है, उसी तरह से ये काम करेगा। और हमारे यहां जो ड्रोन बन रहे हैं वो रुस्तम सीरीज से बन रहे हैं, रुस्तम सीरीज के ही तहत बन रहे हैं, तो उसी श्रृंखला का ड्रोन 2 है। इससे पहले भी 3 विमान रुस्तम श्रृंखला के आ चुके हैं, तो बस जनरल स्टडीज के प्री की दृष्टि से इतना ही जानना मुझे लगता है कि पर्याप्त होगा, और अगर अखबारों में कुछ और विशेष बात हुई तो फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। मित्रों आइए अब मैं मुख्य विषय की तरफ आपको लेकर चलता हूं। मित्रों अभी जो बात मैंने जाति आपके गरीबी भ्रष्टाचार और महिला सशक्तिकरण के बारे में कही है, बिल्कुल वही बात संप्रदायवाद के बारे में है, वही बात बिल्कुल जातिवाद के बारे में है। आप संप्रदायवाद को भी जानते होंगे, मैं मेरा विश्वास है, क्योंकि इसकी चर्चा खूब होती है, आप भी बोलते हैं। जातिवाद के बारे में आप जानते जानते हैं, क्योंकि हम उस व्यवस्था में रह रहे हैं, उस व्यवस्था में हम जी रहे हैं, और सच पूछे तो हमारी चेतना में भी वह धंसा हुआ तत्व है, उसके बारे में भी आप जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यह विषय क्यों चुना इसको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। मित्रों अगर आप 2017 का जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर उठा करके देखें, नहीं फर्स्ट पेपर उठा करके देखें, तो फर्स्ट पेपर में आपको एक क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा। आप देखिए कि वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मित्रों हमें दिशा देते हैं, डायरेक्शन बताते हैं कि हमें किस दिशा में सोचना चाहिए, किसी टॉपिक के बारे में कैसे तैयारी करनी चाहिए। प्रश्न है फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता में रूपांतरित हो गई, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, ध्यान से सुनिएगा, एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता के मध्य विभेदन कीजिए। कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है इसमें जो शेड्स हैं, जो छवियां दिखाई दे रही हैं, जो झलक इसकी है वो उतना आसान नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इतने डिटेल में इस प्रश्न को फैब्रिकेट किया गया है, बनाया गया है, कि भटकने की भी आपको जरूरत नहीं है। देखिए इसमें तीन चार बहुत स्पष्ट रूप से बातें आपसे कही गई हैं। पहली तो बात यह कि आपको जो सांप्रदायिकता को जो डिफाइन करना है, जो समझाना है, वो किस रूप में समझाना है। आंसर राइटिंग के बारे में मित्रों आप लोगों के बहुत से मेरे पास प्रश्न आते हैं, रिक्वेस्ट भी आती है, उसी को बेस बना करके मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। पहला तो यह है कि आपको केवल उस तत्व को दिखाना है कि जो रिलीजन है, जो धार्मिकता है, वो किस तरीके से सांप्रदायिकता में कन्वर्ट हुई। और ध्यान रखिए एक जो बहुत ही खतरनाक पक्ष है, जो जहां स्टूडेंट फिसल जाते हैं, वो ये है कि पूरे का पूरा जब आप स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन में आपको ये पढ़ने को मिलता है, खासकर जब सांप्रदायिकता की बात होती है तो हम मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात लेते हैं, या कह लीजिए इस्लाम धर्म की बात लेते हैं, है ना, कि किस तरीके से 1906 में मुस्लिम लीग का नामक संगठन बनने के बाद से फिर लगातार धीरे 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 वो भारतीय समाज से कटकर अलग होते चले गए, मेन स्ट्रीम से अलग हो गए, और उसके परिणाम में हमारे देश का विभाजन हुआ। तो और इसमें जितने भी लोग हैं वो सब के सब इस्लाम धर्म के हैं, राइट। तो हमारे दिमाग में वो बात है। तो होता क्या है कि हम यहां आकर के वही गलती कर बैठते हैं, हम स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा करते हैं और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है तो हम बता देते हैं कि यह कैसे हुआ, और पता लगा कि हम पूछा कुछ गया था और हम बता कुछ रहे हैं। यहां स्पष्ट रूप से कहा गया है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में आफ्टर 1947, पहली बात। दूसरी बात, केवल एक ही पॉइंट आपको डिस्क्राइब करना है, धर्म किस तरीके से संप्रदाय में बदला। देखिए जो संप्रदाय की जो परिभाषा है वो बेसिकली क्या है, संप्रदाय का मतलब इसको आप इस रूप में ले लीजिए, अगर हम इसको एकेडमिक तरीके से देखें तो ये बेसिकली एक ग्रुप है, समूह है, एक समूह है जो अपने आप को दूसरे समूह से अलग मानता है, बस ये इसकी मूल परिभाषा है। और खासकर जब इसमें एक राजनीति आ जाती है, या कह लीजिए कि जब ये राजनीतिक दर्शन का रूप ले लेता है तो संप्रदायवाद कहलाने लगता है। अब ये जो एक समूह दूसरे समूह से अपने को भिन्न मान रहा है, अब इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, धर्म हो सकता है, और भी दूसरे बहुत से रीजन कारण हो सकते हैं, तो संप्रदाय का रूप ले लेता है। और फिर ये दूसरे समूह के प्रति वैर ईर्ष्या का भाव रखेंगे, या कह लीजिए शत्रुता का भाव रखेंगे, अपने को श्रेष्ठ मानेंगे, दूसरों से एकत्व की भावना महसूस नहीं करेंगे, ये सब उसके तत्व होते हैं। तो कई चीजें होती हैं, लेकिन यहां स्पेशली कह रहे हैं धार्मिकता, एक ही तत्व आपको लेके चलना है। क्लियर हो गया, स्वतंत्रता के बाद दूसरा है धर्म कैसे संप्रदाय में कन्वर्ट हुआ, और अब आप देखें कि आगे आपको किस तरीके से बिल्कुल माइलस्टोन एकदम पहचान दे रहा है कि आपको कैसे लाइन खींचनी है। मतलब ये तो कह लीजिए कि एक इस तरह की ड्राइंग आपको बनानी है, इस तरह का ऐसा चित्र बनाना है। पहले अखबारों में आता था कि डॉट 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 करके उसमें दे दिए जाते थे, डॉट 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 और नंबर डाल दिए जाते थे, 1 2 3 4 उस पूरे के पूरे डॉट के बीच में। उसमें आप नंबर वाइज उन डॉट पर लाइन खींचते चले जाइए, 1 से 2, 2 से फिर 3 जहां लिखा है, 3 से 5, 4 जहां लिखा है, उन लाइनों को आप मिलाते चले जाइए। तो जब पूरे डॉट मिल जाएंगे तो पता लगा कि एक हाथी बन गया है, जबकि वो डॉट डॉट में हाथी दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल यहां वही स्थिति है कि आपको वो डॉट डॉट दिखा रहे हैं कि ताकि आप भटकने से बचे। इसके बाद वो कह रहे कि इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, बस आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए और उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दीजिए कि देखिए किस तरीके से ये जो धार्मिकता थी, और जो उदाहरण लेंगे वो धार्मिकता के सांप्रदायिकता में परिवर्तन वाला उदाहरण लेंगे, दूसरा नहीं। इसके बाद फिर लास्ट पॉइंट दे रहा है दोस्तों कि धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता के मध्य विभेदन कीजिए। धार्मिकता क्या है और सांप्रदायिकता क्या है, इनमें क्या अंतर है, इसके बारे में आप बता दीजिए। बस खत्म हो गई बात। तो मित्रों आप देखिए कि किस तरीके से इस प्रश्न में ही आपके लिए ढेर सारे सहूलियतें दे दी गई हैं, ढेर सारी बातें बता दी गई हैं, आपकी मदद की जा रही है। तो दोस्तों मैंने कुछ बातें आपको सांप्रदायिकता के बारे में इससे ठीक पहले बता दी हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे टॉपिक पर आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, सैद्धांतिक तरीके से, या यूं कह लीजिए कि आपकी जो समझ है वो एकेडमिक फॉर्म की होनी चाहिए, एकदम लेमैन की नहीं। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है वो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं आता हूं ईमेल पर। दोस्तों मुझे ईमेल मिले हैं, उनमें से 2 स्टूडेंट हैं, संतोष कुमार जो मुंगेर बिहार से हैं और राजू अनीता कुशवाहा जो पूर्वी चंपारण बिहार से हैं, आप भी बिहार से हैं, और दोनों ने ये मेल मुझे लिखा है कि अभी जो बिहार के पीसीएसपीएससी का जो एग्जाम हुआ था मेंस का, उसमें इन दोनों विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त हुई है और इन दोनों ने अपनी सफलता का कुछ श्रेय afeis.com को भी दिया है। तो मित्रों संतोष जी और राजू अनीता जी, आप दोनों को मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की तरफ से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और साथ ही इंटरव्यू में भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिले इसके लिए शुभकामनाएं भी। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और आप में से ही कुछ दोस्तों के नाम हैं, विकास कुमार यादव, राज नंदनी पटेल जबलपुर मध्य प्रदेश से, संतोष नई दिल्ली से, चंदन सिंह कंवर, रिद्धि पाठक वडोदरा गुजरात से, अलका यादव और धनंजय त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।